Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद में छठे अध्याय में शायद सातवें मंत्र की व्याख्या है।
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमेड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिङ्गम् सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः।
उपनिषद के माध्यम से लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है जिसको हम पाना चाहते हैं और जिसको पाकर हम अमर हो जाते हैं, परमात्मा के प्राप्ति के साथ साथ ही अमृतत्व की प्राप्ति है। कैसा है वो परमात्मा? जिसमें अमृतत्व विद्यमान है वो परमात्मा का स्वरूप तटस्थ लक्षण के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये मंत्र की व्याख्या कुछ कल हो गई थी।
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्, वह ईश्वरों का भी ईश्वर महेश्वर है। ईश्वरों का मतलब हुआ अलग अलग गुणोपाधि से युक्त जो परमात्मा है उसको ईश्वर कहा है। हमने कल संकेत किया था कि सनातन धर्म या वेदांत दर्शन ईश्वर को एक मानता है। लेकिन यह बहुवचन प्रयोग किया हुआ है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्रुति खुद ईश्वर को अनेक मानते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमने कल व्याख्या की थी कि रजोगुण के निमित्त से जो सृष्टिकर्ता हो गया वो भी एक ईश्वर है, सत्वगुण के निमित्त से पालनकर्ता हो गया वो भी एक ईश्वर हो गया, और तमोगुण के निमित्त से संहारकर्ता हो गया वो भी ईश्वर है, क्योंकि ये समस्त सृष्टि को पूर्ण सामर्थ्य के बिना कोई भी रचना नहीं कर सकता है, और अकेले जिसने ये सारे विश्व को बनाया है वो बनाने वाला ईश्वर ही होना चाहिए, कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति इस जगत को नहीं बना सकता। और इतने बड़े विश्व प्रपंच को रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, व्यवस्था करने वाला कोई छोटे मोटे जीवों के द्वारा ये संभव न होने के कारण ये मानना पड़ता है कि अवश्य कोई न कोई परम शक्तिशाली कोई तत्व है जो अकेले सारी व्यवस्था को मिलाता है। इसी तरह ये सारे जगत को महाप्रलय में समष्टि प्रारब्ध समाप्त होने पर संहार करने का काम, व्यष्टि प्रारब्ध समाप्त होने पर उसको नाश करने का काम, ये भी कोई व्यवस्थित कर्ता होनी चाहिए, और समर्थशाली कर्ता ही ये सब काम कर सकता है, अवश्य कोई ईश्वर ही इसका संहार कर सकता है। वैदिक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो संहार भी ईश्वर करता है ये मानता है, और लोग नहीं मानते। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, कल के प्रवचनों का थोड़ा संकेत कर देते हैं। व्यष्टि व्यष्टि गुण उपाधि वाले अलग अलग ईश्वर हो गए, तो समष्टि गुण उपाधि वाले जो माया उपाधि वाला है वह ईश्वर का भी ईश्वर हो गया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वह परम हो गया, क्योंकि उसकी समष्टि माया उपा है। गुण साम्य अवस्था उपाधि वाले को एक ईश्वर कहा, गुण विषम वाले उपाधि वालों को अलग अलग ईश्वर कहा, ये गुणों के चलते एक और अनेक हुए हैं। और वह जो तत्व है जिसको प्राप्त करके अपरोक्ष अनुभूति करके अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, वो तत्व व्यष्टि और समष्टि गुणों से परे है, इसलिए उसका नाम रख दिया है महेश्वर। परमासी पदे निस्त्रेर गुण्य शिवाय नमो नमः, पुष्पदंताचार्य जी ने इसी बात को इस श्लोक के द्वारा संकेत किया। जब वह गुणातीत अवस्था अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित रहता है तब उसी का नाम शिव होता है, और गुणों से युक्त होने वाले का नाम भव, हर और मृड होता है। गुणातीत चैतन्य का नाम शिव है, जिसको पुष्पदंताचार्य जी गुणातीत चैतन्य को शिव के रूप में मानते हैं, वही इस उपनिषद श्वेता सूत्र उपनिषद के ऋषि उसको महेश्वर के रूप में मानते हैं। तम देवतानां परमं च दैवतम्, वही समस्त देवताओं में वह परम देवता है। ये देवता कौन है इसके बारे में वेदांतियों को ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए, और जो शास्त्र का अध्ययन नहीं किए हैं, वेदांत का अध्ययन नहीं किए हैं, उन लोगों को भ्रांति हो तो हो, जिसने वेदांत का श्रवण किया, सत्संग किया है, उन लोगों को भ्रांति नहीं होनी चाहिए। देवता कौन है ये भी एक जीव विशेष है, जैसे आप और हम एक जीव संज्ञा वाले जीव विशेष हैं, इसी तरह पशु पक्षी भी एक जीव विशेष हैं, और देवता भी जीव विशेष हैं। सामान्यतया किसी मनुष्यों को कोई शब्द प्रयोग कर दे कि ये जीव जंतु हैं, तो थोड़ी जस्ती नहीं है ये भाषा। ये सब जीव जंतु हैं, तो सामान्य रूढ़ में जीव जंतु शब्द का अर्थ तो कुत्ते, चूहे, बिल्ली, पशु पक्षी, इसी में ये शब्द रूढ़ हुआ है व्यवहार में। जीव जंतु माने मनुष्य इतर जो प्राणी छोटे मोटे हैं उन्हीं को जीव जंतु कहा जाता है। मनुष्यों को जीव जंतु कह दो तो थोड़ा उठपटा लगता है, जबकि मनुष्य भी जीव जंतु हैं। संस्कृत भाषा में जीव शब्द का अर्थ होता है प्राण से संबंधित, जो है उसको जीव कहते हैं। जो सीधे ही प्राण से संबंध रखता है, प्राण से संबंध का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर से जो संबंध रखता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को ही प्राण कह दिया जाता है, और उससे जो संबंध सीधा रखता है प्राणवंत हैं, उन्हीं को वेदांत दर्शन या संस्कृत भाषा में उसको जीव कहते हैं। जीव प्राण धातु द्वारा, प्राण धारण धातु द्वारा जीव बनता है। इसी तरह जिनको हम देवता कहते हैं वो भी जीव विशेष हैं। सामान्य अज्ञानियों को जब ये कह देते हैं कि वो देवता, वो भी जीव हैं, तो उनको भी कुछ अटपटा लगता है। लेकिन हम लोगों जैसे जो वेदांत के रहस्य और चेतना की अवस्था के रहस्य को जानने वाले हैं, प्रक्रिया को जानने वाले हैं, कोई देवताओं को जीव कह देता है तो हमको आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि उसका रहस्य है। जिसको हम सामान्य जीव कहते हैं वो तमो प्रधान से युक्त हुए हुए हैं, और जिसको हम मनुष्य कहते हैं तो वह रज और सत्व से युक्त हुआ है। या दूसरी भाषा में यूं कहें, जिसको हम लोक में सामान्य जीव कहते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि जीव जंतु, वह अशुभ कर्मों का फल से युक्त हुए प्राणी है। और जिसको व्यवहार में मनुष्य कह दिया जाता है वह शुभ और अशुभ दोनों से युक्त हुए प्राणी है। और जिसको देवता कह दिया जाता है वह केवल शुभ कर्मों से युक्त हुए प्राणी है, मनुष्य है। मनुष्य ही जब अशुभ कर्मों के फल से युक्त होता है तो पशु पक्षी होता है, और जब शुभ और अशुभ दोनों उभय बराबर कर्मों से युक्त होता है तो मनुष्य कहलाता है, जब शुभ कर्मों से युक्त होता है तो वही देवता कहलाते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि ये देवता भी क्षुद्र प्राणी हैं, जिसके सामने तम देवता नाम परमम दैवतम, देवता भी जब तक उसको प्राप्त नहीं होते हैं तब तक जायस्व और म्रियस्व के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम लोग ही मरेंगे और पैदा होते हैं, देवता मरते नहीं और पैदा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं समझना। देवता लोग भी मरते हैं और पैदा होते हैं, मरते हैं और पैदा होते हैं। और ये आश्चर्य की बात है, एक और रस से बता दें, यदि मनुष्य होकर समझदारी बढ़ गई और यही उसने अपनी समझदारी को विकास किया और उपनिषद के द्वारा बताए गए युक्ति का प्रयोग करके श्रवण मनन निधि ध्यासन का प्रयोग किया तो वह सीधे यहीं से वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेगा। परंतु जो कर्म के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा देवता बनकर स्वर्ग भोगी बन गए हैं, वे देवता संज्ञा वाले प्राणी को मनुष्य के रूप में पैदा होना ही पड़ता है। और जब तक मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होंगे तब तक उनको वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए तो कहा है शास्त्रों ने भाग्यो जये न बहुजन्म समर जिते न, और इसलिए तो कहा लब्धम कथंचित नरजन्म दुर्लभम, लब्ध्वा कथंचित। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के आरंभ में इस बात को कह देते हैं, लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम। ये तो नर जन्म मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है, ये सुलभ नहीं है, सभी को सहज रूप में ये जन्म प्राप्त नहीं होता है। आप लोग शायद ब्रह्मसूत्र के स्वाध्याय प्रातःकालीन स्वाध्याय में नहीं बैठते होंगे, जो बैठता है उसको ये स्पष्ट हो चुका है किस तरह प्राणी स्वर्ग से फिर जमीन धरती में आता है और किस तरह मानव देह ग्रहण करने के लिए वह अनुसयी बनता है। और ऐसा नहीं कि अनुसय बनने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों अनुसयी जीवों में से किसी एक भाग्यशाली को ही गर्भाशय की प्राप्ति होती है, अन्यथा गर्भाशय की प्राप्ति किसको होगा, बड़ा मुश्किल से गर्भाशय की प्राप्ति होती है। जब तक मानव गर्भाशय, गर्भाशय भी पशु पक्षी के गर्भाशय प्राप्त कर लिया तो फिर क्या प्राप्त कर ली। रेत सिंचन का प्रक्रिया है वो भी पशु पक्षी आदियों में वो प्रक्रिया में चला गया तो चला गया, उससे क्या महत्व हुआ। मानव जीवन के लिए रेत सिंचन के द्वारा गर्भाशय की अवस्था की प्राप्ति वो तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वो प्राप्त होता है किसी न किसी अनेक जन्म के भाग्योदय से, लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम। और इस प्रकार से बड़े भाग्य से बड़े महत्वपूर्ण जन्म प्राप्त कर लिया फिर भी स्वात्मान मुक्तो न ये तमूढ़धि ही, अपने ही उद्धार के लिए यदि प्रयत्न नहीं करता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। यो तो कहते हैं कि मनुष्यों को बुद्धिवान प्राणी मानते हैं, बुद्धिशाली प्राणी है, विचारवान प्राणी है, लेकिन ऐसे उत्तम मनुष्य जन्म को प्राप्त करके वह अपने ही उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करता है तो उससे बढ़कर मूढ़ व्यक्ति और कोई नहीं है। और वो क्यों मूढ़ है, तो क्योंकि वह असद ग्रहात आत्महा, असत वस्तु को ग्रहण करके उसने अपना ही विनाश किया है। असत ग्राहक आत्महा, ये जो असत वस्तुओं को आत्मा के रूप में जो ग्रहण करने की वृत्ति बन गई है, अनात्मा को आत्मा मानने की जो वृत्ति बन गई है, वही उस अनात्मा को आत्मा मानने की जो वृत्ति है, वही वृत्ति उसके लिए जैसे नदी में मगरमच्छ और जीवों का घात करने के लिए बैठा रहता है तो अपने से छोटे छोटे सारे जीवों को वह पकड़ते और खाते रहता है और नाश कर देता है, उसी प्रकार से मनुष्य जब असत वस्तुओं को आत्मा के रूप में ग्रहण करता है, मानने लग जाता है, देह गेह आदि को ही आत्मा के रूप में जब निश्चय करता है तो वही उसके विनाश का कारण बन जाता है। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, तम देवतानां परमं च दैवतम्। जिस तत्व को पाने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होती है, दोबारे मरने के लिए जन्मना नहीं पड़ता, वो कैसा है तो बोले देवतानां परमं च दैवतम्। वो देवताओं का भी देवता है। देवता कौन है? एक एक अध्यात्म के एक एक अधिदैव हैं। इसीलिए हमारा वेदांत दर्शन अनेक देववाद को तो मानता है लेकिन अनेक आत्मवाद को नहीं मानता, इतना ख्याल रखना। देवता अनेक हैं, ईश्वर भी अनेक हो सकते हैं लेकिन आत्मा अनेक नहीं हो सकते, आत्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक है। ये सनातन धर्म की विशेषता है कि वो एक में अनेकता को भी देखता है और अनेक में एक को भी देखता है। एक ही अलग अलग प्रयोजन के लिए अनेक हो जाता है, अलग अलग प्रयोजन से अनेक हुआ हुआ वही व्यक्ति मूल रूप में एक ही है। तो वेदांत दर्शन एक बात, एक आत्मवाद को मानने वाला दर्शन है, परमार्थ में एक वस्तु है, अन्यत्र व्यवहार और प्रतिभास में वो अनेक हो सकता है। शास्त्र दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से और प्रतिभास दृष्टि से वस्तु को निश्चय करने की ये तीन दृष्टि है। एक तो शास्त्र दृष्टि से हम किसी भी वस्तुओं का निश्चय करते हैं कि ये वस्तु ऐसा है। दूसरी बात है कि व्यवहार दृष्टि से हम वस्तुओं का निश्चय करते हैं कि ये वस्तु ऐसा है। और तीसरी बात, प्रतिभास की दृष्टि से हम निश्चय करते हैं कि ये वस्तु ऐसा है। जहां तक कि ये तीनों जो दृष्टि है वह अविद्या की ही दृष्टि है, अज्ञान की ही दृष्टि है। ये तीनों दृष्टियों के मूल में अज्ञान ही काम कर रही है। शास्त्र के दृष्टि के मूल में भी अविद्या ही काम कर रही है, व्यवहार दृष्टि के मूल में भी अविद्या ही काम कर रही है, प्रतिभास दृष्टि के मूल में भी अविद्या ही काम कर रही है। इसलिए तीनों दृष्टि अविद्या मूलक है। जब अविद्या से हटकर परे होकर जब देखते हैं तो वस्तु एक का एक है, उस वस्तु में भिन्नता अनेकता हो ही नहीं सकती है। तो उसी बात को ये वेदांत दर्शन है। तम देवतानां परमं च दैवतम्, एक एक अध्यात्म का एक एक स्वतंत्र देवता है। हमारा चक्षुर इंद्रिय ये अध्यात्म कहलाता है। आंख जिसको हम देखने का साधन मानते हैं, वो जो आंख है जिसको संस्कृत भाषा में चक्षुर इंद्रिय कहा जाता है, उसके अपनी स्वतंत्र देवता है। और जिस देवता से वो उपकृत होता है वो उसका देवता है। देवता शब्द का अर्थ होता है जिससे उपकृत हुआ जाता है उसी को देवता कहते हैं। जिसके द्वारा अध्यात्म उपकृत होता है और जिसके द्वारा अधिभूत उपकृत होते हैं, उन अध्यात्म और अधिभूतों का उपकारक चैतन्य है उसको देवता कह देते हैं। हमारे जो चक्षुर इंद्रिय आंख है इसका उपकारक सूर्य है, क्योंकि यावत रूप के अधिदेव सूर्य हैं और जितने भी जगत में लाल पीला हरा नीला रूप हैं, रंग हैं, उन सब के मालिक उसका सबके अधिदैव सूर्य है। रूप जितने भी हैं वह अधिभूत कहलाते हैं और चक्षु अध्यात्म कहलाता है। और अधिदैव रूप का और आंख का दोनों का उपकार करते हैं सूर्य, क्योंकि आंख का संबंध भी प्रकाश से है, रूप का संबंध भी प्रकाश से है। वो प्रकाश सूर्य में विद्यमान होने के कारण सूर्य अधिदैव हैं, रूप अधिभूत हैं और चक्षुर इंद्रिय अध्यात्म है। इसी तरह हमारी जो कान है जिसको हम श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं, उसके अपने ही देवता हैं स्वतंत्र। सूर्य कान का उपकार नहीं कर सकते, सूर्य कान का उपकार नहीं कर सकते, चक्षु के उपकार कर सकते हैं, कान का उपकार नहीं कर सकते। कान के उपकारक देवता हैं अश्विनी कुमार, दिग देवता। कान के उपकारक देवता दिग देवता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधः, जो दस दिग हैं इनके जो अधिपति हैं दिग देवता, वे कान के अधिदैव हैं। केवल कान के अधिदैव नहीं है, वो शब्दों के भी अधिदैव हैं, क्योंकि शब्द की जो ग्राह्यता वो श्रोत्र इंद्रिय में है और किसी भी इंद्रियों से शब्द ग्रहण नहीं होगा। और शब्द जहां भी प्रकट होता है वह दिशाओं में ही गूंजती है। जैसे यहां बोला हुआ शब्द पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अध सब जगह गूंजता है इस हॉल के अंदर के। ये बोला गया ये शब्द पूर्व की तरफ से सुनाई देता है कि पश्चिम की तरफ से सुनाई देता है कि उत्तर की तरफ से, ये चारों दिशाओं में आठों दिशाओं में दसों दिशाओं में व्याप्त हुआ हुआ है ये शब्द। तुम जिधर भी कान घुमाओगे उधर से ही शब्द ग्रहण होगा। और इसके देवता हैं दिग देवता, इसलिए दिग देवता चक्षुरी माने श्रोत्रिंद्रिय का उपकारक हैं और शब्द का ग्राहक हैं। क्योंकि जब दिग देवता श्रोत्रिंद्रिय को उपकार करते हैं तब ये श्रोत्रिंद्रिय शब्द को ग्रहण कर सकते हैं। तो शब्द हो गया अधिभूत, श्रोत्रिंद्रिय हो गया अध्यात्म, दिग देवता हो गए अधिदैव। इसी तरह जो हाथ है उसके अधिदैव इंद्र है और हाथ का अधिभूत जो है वह विषय है जिसको हाथ पकड़ता है। हाथ के द्वारा पकड़ा जाने वाले यावत पदार्थ अधिभूत कहलाते हैं और स्वयं जो हाथ है जिसको संस्कृत भाषा में कर इंद्रिय बोलते हैं वह पानी हाथ उसके उपकारक अधिदैव इंद्र हैं। इंद्र के उपकार से हाथ विषयों को पकड़ सकने के कारण अधिभूत और अध्यात्म का उपकारक देवता इंद्र देवता हैं। ऐसे अध्यात्म में जितने अध्यात्म हैं सभी के अधिदैव स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया है। तम देवता नाम वेद में देवताओं के लिस्ट में सबका नाम, अग्निर्देवता वायो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता मरुतो देवता। देख लो ये देवताओं के बहुत नाम हैं, सभी देवता हैं। इसका मतलब है कि वो मंडल मंडल के अधिपति वो एक एक देवता हैं। सूर्य मंडल के अधिपति सूर्य देवता, चंद्रमंडल के अधिपति चंद्र देवता, वायुमंडल के अधिपति वायु देवता। इसलिए एक एक जो मंडल के स्वतंत्र स्वतंत्र स्वामी वही एक एक देवता हो गया। स्वर्ग मंडल के अधिपति इंद्र देवता, ऐसे ही चक्षुरिंद्रिय के अधिपति सूर्य देवता। जैसे उनके अधिदैव अधिभूत मंडल हैं उनके अधिपति हैं, वैसे ही अध्यात्म मंडल के अधिपति तत्त देवता। सूर्य अंतरिक्ष में यदि चमकते हैं